संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार, उसके अंतर्गत सुपरिणामाधिकार की चर्चा चल रही है, जिसमें अश्विनी गाथा पर बात चल रही है। अश्विनी गाथा के अंतर्गत ये कहा गया था कि जो अरहंत भगवान को द्रव्यत्व से, गुणत्व से और पर्यायत्व से जानते हैं, वे अपने आत्मा को जानते हैं, और जो अपने आत्मा को जानते हैं वे उनका मोह नाश को प्राप्त होता है। कि मोह क्या है, मोह क्या है, देखो 13वीं गाथा देखो। द्रव्यादि में जो मूढ़ता सो मोह है, लिखा है ना उसमें, मिला पढ़ो गाथा पढ़ो।
द्रव्यादि में जो मूढ़ता वह मोह उसके जोर से कर राग रुस पर द्रव्य में जिए शुभ हो जाऊं ओर से।
द्रव्यादि की मूर्ता है वो तो दर्शन मोह है, और उसके जोर से जो ये आत्मा पर पदार्थों में राग द्वेष मोह करता है, तो राग द्वेष मोह है चारित्र मोह। इस तरह इसमें दर्शन मोह और चारित्र मोह दोनों की परिभाषाएं बता दी हैं। अभी अपने जो बात चल रही है वो दर्शन मोह की चल रही है। टीका की दूसरी पंक्ति का अर्थ अपन कर रहे थे, जिसमें ये लिखा है कि अरहंत भगवान के देवगुण पर्याय जैसे हैं वैसे ही मेरे हैं, क्योंकि उनमें कोई अंतर नहीं है। देखो दादा, जो अरहंत भगवान को द्रव्यत्व रूप से, गुणत्व रूप से और पर्याय रूप से जानता है, वह वस्तुतः अपने आत्मा को जानता है, क्योंकि दोनों में निश्चय से अंतर नहीं है। ये अंतर नहीं है की बात अपन कल दो तीन दिन में अपन ने चलाई, दो दिन चला गए ना इसमें। तो एक अपेक्षा तो ये है कि इसमें जो परिभाषाएं दी हैं द्रव्यगुण पर्याय की, कौन सी, अन्वय सो द्रव्य, अन्वय का विशेषण सो गुण, और अन्वय का व्यतिरेक सो पर्याय, इनकी विस्तृत व्याख्या कल परसों की थी। और दूसरा ये कहा था कि भाई द्रव्यगुण पर्याय का स्वरूप समझते हैं ना, तो वहां कहते हैं गुणों के प्रणमन को पर्याय कहते हैं, अथवा जो जो भी परिभाषाएं हैं। अब आज जो मैं यहां समझाना चाहता हूं कि उनने अरहंत भगवान को द्रव्यगुण पर्याय से जाने, ये क्यों, सिद्ध भगवान को जानना कह देते, और पांचों परमेश्वरी को कह देते, पांचों परमेश्वरी में क्या दिक्कत थी। आजकल ये बहुत चल रहा है कि जहां अरहंत भगवान विराजे हैं वहां पांच परमेश्वरियों को विराजमान करो क्या, और उसके पीछे बहुत विचित्र अभिप्राय है, क्योंकि सिद्ध भगवान तो मोक्ष में चले ही गए और अरहंत भगवान की पक्की गारंटी हो गई कि वे मोक्ष में जाने वाले हैं। अरहंत भगवान को इसलिए नहीं कि वे अरहंत हैं, उनकी भी क्रेडिट कैसे है कि वे शीघ्र मोक्ष में जाने वाले हैं, पक्की गारंटी हो गई। अब आचार्य की तो नहीं है, उपाध्याय की नहीं है, साधु की भी नहीं है। नवोकार महामंत्र का जब मैं अर्थ करता हूं तो बताता हूं कि मोक्ष जाने के लिए तो आचार्य उपाध्याय के पद जरूरी नहीं है, साथ में ये कहता हूं कि जरूरी तो है ही नहीं बल्कि बाधक हैं। यदि वो आचार्य पद पर रहेगा तो गारंटी से छपक श्रेणी नहीं मार सकता, केवल ज्ञान नहीं हो सकता, मोक्ष नहीं जा सकता, क्योंकि उसके माथे पर बोझा रहता है प्रशासन का, उपाध्याय के पद पर रहेगा तो अध्यापन का बोझ उसके माथे पर रहता है। जैसे प्रिंसिपल और प्रोफेसरों का कल्याण नहीं हो सकता ना जैसे उन दोनों की बात कही है, तो अब उनकी होड़ में इनको बैठाने का क्या मतलब है? जब आप आचार्यों का माल तो अपने पास है, आप कुंदकुंदाचार्य के गीत गाते थकते नहीं हैं, आपको तकलीफ क्या है कि है? क्योंकि जिसके मोक्ष जाने की गारंटी है उसमें तो कभी कोई विवाद खड़ा हो नहीं सकता, और जिसके मोक्ष जाने की गारंटी नहीं है ऐसे लोगों के पास भी जो पद होता है उसको हम कैसे मान्यता दे सकते हैं? घबराना नहीं, पूरी बात समझना। वो नौवें गृहमिक में जाने वाला जो अभद्र है वो द्रिलिंगी मुनि जिसकी महिमा गुरुदेव श्री ये कह के गाते थे कि सारे शरीर की चमड़ी उतारे और उस पर नमक छिड़के तो अभी आंख का कोया लाल नहीं हो, ऐसी तो क्रोध कसाय को जीता है। तो चक्रवर्ती आके नमस्कार करे क्या, तो अभी जिसे अभिमान नहीं आए ऐसा मान कसाय को जीता है। अभी तो हमारे तो कोई बड़ा नाम का प्राणी जिसे जिस क्षेत्र में बड़ा कहते हो तो उसके पास सब फोटो कराने के लिए कैसे उत्सुक रहते हैं, मेरा मेरा मेरा, मेरे फोन में मेरे इसमें खींच दो, मेरे पास रहना चाहिए। पहले भी ये बीमारी थी लेकिन जितनी आज है उतनी नहीं थी। मैं गर्मियों के शिविर में विदिशा गया था, वहां मैं हर महीने जाता था और एक एक महीने रहता था, असल में वैसे गर्मियों की छुट्टी होती थी और भाई साहब वहां रहते थे इसलिए वहां सवा महीने का शिविर होता था। एक भाई मुमुक्षु तो थे लेकिन नेता टाइप मुमुक्षु थे। एक दिन जबरदस्ती मुझे खाना खाने के लिए ले जाने ने उन आग्रह किया, घर दूर था, उस वक्त वहां ऐसी गाड़ियां माड़ियां नहीं थी, पैदल ही जाना पड़ता था और बिल्कुल धूप का समय रहता था। तो मैंने कहा मिठू लाल जी मैं तुम्हारे यहां खाना खाने नहीं आ सकता हूं, तुम्हारा घर बहुत दूर है। तब तो उनके पास जहां घर था वहां खेत थे, उनके साथ में खेती करते थे, आगे मत बंगला था वो, पीछे खेत थे बहुत, उसकी बहुत बड़ी कॉलोनी बन गई है, वो अरबों की जमीन हो गई है। लेकिन नहीं माने, वो नहीं माने तो ले गए, गए तो वहां जब बैठक में मैं बैठा तो एक फोटो लगा था जिसमें वो स्वयं नेहरू जी के गले में माला डाल रहे थे, जवाहरलाल नेहरू जी के गले में। आए होंगे कभी विदिशा में जवाहरलाल नेहरू, और वो तो बहुत तेज तलदार आदमी थे, धक्का मार मूर के किसी को भी अंदर घुस जाते थे। मेरे साथ भी उन्होंने कई दफे ऐसा किया कि एकदम मैं कहीं खड़ा था पीछे तो आए पंडित जी आओ करके मुझे आए करके, चलो पंडित जी को जाने दो, पंडित जी को जाने दो, पंडित जी को जाने दो, अंदर पहुंच गए जहां तक जाना था पंडित जी के साथ। तो मैंने देख के कहा अच्छा मिठूलाल जी इसलिए तुम लाए हो मुझे, ये दिखाना था तुम्हें इसलिए तुम मुझे लाए हो यहां। तो एकदम मुस्कुरा के बोले कि आपने तो मेरे मन का चोर पकड़ लिया, मैंने हम जरा से भी थोड़ा बड़ा नाम कह बड़ा मड़ा होए नहीं है? नहीं कोई पूछता ही नहीं हूं, लेकिन जरा सा भी हमको लगता है तो उसके साथ फोटो खींच गए, हमें चाहिए। तो ऐसी जो जहां परिस्थिति हो, मेरे कहने का मतलब ये है, तो अभी यहां पर ऐसे ही सैकड़ों आचार्य आज भी हैं, हैं कि जिनका मोक्ष तो बहुत दूर। मैं कह रहा था कौन वे मुंडार कौन वो तो ठीक है, वो नम्मे गरीबिक में जाने वाले देवलिंगी मुनिराज के जे सच्चे मुनिराज नहीं हैं, इसका पता गंधर्व देव को भी नहीं चले, पर अकेले केवली भगवान को ही चले। बाहर से इतना निर्मल आचरण हो, इतनी मंद कसाय हो, बता रहे थे चक्रवर्ती बंदे श्रीमद ने लिखा ना, तो ना आवे मान जो, ऐसा आदमी यहां आचार्य बन सकता था कि नहीं बन सकता? क्यों ऐसे कोई मुनिराज हो तो उन्हें हमेशा जो भी समाज है और जो भी है वो आचार्य बनाने के लिए तैयार होंगे कि नहीं होंगे? तो फिर हमारी वेदी पे भगवान के बगल में अभव्य भी विराजमान हो जाएंगे। इसलिए मैं ये कहता हूं, एक भाई ने आकर मेरे से पूछा है क्या करके, तो मैं उस वक्त ज्यादा लंबा जवाब नहीं दे पाया। मैंने कहा भाई मेरे को तो नहीं जीतता, लेकिन वो यहीं बैठे होंगे, कौन भाई, मैं तो नाम भूल गया कौन ने पूछा था, चले गए, कोई बात नहीं, इन्हें ये भी मालूम है कि वो कौन थे और चले गए। अच्छा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्यों, लेकिन ये बात मेरी मतलब समझ में आई ना। अपने यहां प्राचीन काल से जो मर्यादाएं हैं वो सिर्फ अरहंत परमेष्ठी की हैं, सिद्धि की भी नहीं, सिद्धि की मूर्ति नहीं होती है। हमने वो खाका खींच खींच के बना बना दिया, कहीं कुछ किया कहीं कुछ किया, लेकिन वो कहीं चली नहीं, सिद्धि का कहीं पंच कल्याणक नहीं हुआ। क्यों? अब मूर्ति विराजमान करोगे तो उनका पंच कल्याणक तो करोगे ही, लेकिन जिनका अनंत काल तक भी मोक्ष जाना नक्की नहीं है उनका मोक्ष कल्याणक कैसे करोगे? जिन्हें अनंत काल तक केवल ज्ञान होना नक्की नहीं है उनका केवल ज्ञान कल्याणक कैसे करोगे? तो हमारे पूर्वजों ने अरहंतों में भी तीर्थंकर तक सीमित रखा, घबराना नहीं। अब दो अरहंतों में क्या फर्क है कि बहुत 50 तरह के चक्कर हैं, बस अपने 24 तीर्थंकर के कम होते हैं, 24 मूर्तियां के कम हैं, एक से एक अच्छे हैं, फिर 20 तीर्थंकर हैं जिनकी दिव्य ध्वनि का लाभ हम सबको मिलता है, उनसे हमारा मन नहीं भरता तो कैसे भरेगा? हम उस पवित्र भारत भूमि के पैदा हुए जीव हैं जहां 33 करोड़ देवताओं से भी लोगों को संतोष नहीं होता है। क्यों क्यों, कौन है 33 करोड़ वाले, जानते तो हो गए? मतलब 33 करोड़ वाले तुम ये मत समझो कि हम नहीं है उनमें से। यदि हम सिद्धों को शामिल करेंगे तो हम तो अनंत वाले हैं भाई साहब, हम पीछे थोड़ी हैं उनसे। क्या हाल है कुमार जी, सिद्ध तो परमेष्ठी हैं, पंच परमेष्ठी हैं, पंच परमेष्ठी को करोगे तो उन्हें तो कैसे छोड़ सकते हो? फिर दिक्कत ये हो जाएगी कि कौन का कैसा क्या है, वो तो बाद में जो मंदिर बनेंगे तो जो के हिसाब ऐसा फर्जी होता है कि घरे आए तो नागना पूछे और बामी पूजन जाए। इधर तो हमारे आचार्य महाराज विराजमान हैं, उनकी तो बात नहीं करो, 2000 वर्ष पहले कोई हुए थे, हुए होंगे, क्यों उनको विराजमान करो, ये कहां से लाए? अरे वो गौतम गंधर्व विराजमान थे, गौतम गंधर्व की भी मूर्ति कहीं नहीं है, ऋषभ देव के भी कितने गंधर्व थे, ऋषभ सेन से लेकर के 84 गंधर्व थे, उनकी भी कहीं नहीं है, लेकिन हमें तो कुछ ना कुछ नया कमाल, तो कहीं ना कहीं उन असत तीनों की एंट्री के लिए ये प्रयास है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो हम ऐसे प्रयासों से दूर तो रह सकते हैं, असहमत तो रह सकते हैं। क्यों हेमचंद जी, इतनी बात मैंने सिर्फ इसलिए कही कि वो तर्क सबके दिमाग में पहुंच जाए, मेरे विद्यार्थियों के दिमाग में भी, क्योंकि वे पंडित नाम के प्राणी है ना, उनसे जगह जगह लोग पूछेंगे कि साहब इसमें करने जी इसमें क्या करें, इसमें क्या करें, इसमें क्या करें, तो उनको उनके पास भी उसका उत्तर रहे और समाज के लोगों को भी उत्तर रहे। ये उत्तर रहे विद्यमान सैकड़ों लोगों के पास तो फिर कोई चिंता नहीं है, हम नहीं रहेंगे तो भी ये उत्तर चलेगा। तुमने इसलिए सभा में इतना समय लिया। अपनी बात क्या चल रही है? अरहंत भगवान का नाम क्यों लिया? जो जानति अरहंतम, सिद्धम क्यों नहीं लिया, आचार्यम क्यों नहीं लिया? और पांच परमेष्ठी में से अकेले अरहंत परमेष्ठी को क्यों पकड़ा, त्रिकाली ध्रुव को क्यों नहीं पकड़ा? यदि मेरी बात सुनना, उनको पर्याय की समानता ही बतानी होती। अमृतचंद ने लिखी है और मैंने उसका अर्थ भी किया है और मुझे भी मान्य है, घबराना नहीं, लेकिन अकेली समानता बतानी होती तो अरहंत ही को काय को लेते, जो समान है उन सब को लेते ना, जिस बात में समानता है। तो वो अकेले ये नहीं बताना चाहते हैं क्या अन्वय व्यतिरेक, वो अकेले उत्पाद व ध्रुव दोनों में मौजूद है, ऐसा नहीं बताना चाहते हैं। ऐसा समझ लो कि मेरा अमृतचंद से थोड़ी असहमति व्यक्त करते हुए मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि यहां पर अंतर नहीं होना मुख्य नहीं है, अंतर होना मुख्य है। क्योंकि तुम अपने भगवान के अंदर के अंतर को पहचानो, भेद विज्ञान की बात है कि हम पर्याय में ऐसे हैं जबकि द्रव्य स्वभाव से बिल्कुल उन जैसे ही हैं, गुणों भी एक गुण हम में कम नहीं है, लेकिन पर्याय में इतना अंतर है कि क्या अंतर है? अब हम अरहंत आए तो फिर अरहंत से हम तीर्थंकर पर चले गए। वो तीर्थंकर पर क्यों गए थे उसके लिए मैंने आपको बात बताई। अब मैं कहना चाहता हूं कि तीर्थंकर पर सिर्फ द्रव्य गुण पर, तीर्थंकर के भी द्रव्य गुण पर जाए पकड़ो, इससे आगे मत जाओ। वे घंटा लटक रहे ना वहां, उन घंटों पर मत जाओ। छत्र लग रहे हैं उन पर मत जाओ, अतिशय हैं उन पर मत जाओ, क्योंकि हमको तो फटाफट उन पर हमारा दिमाग चला गया, भगवान पे जाते ही नहीं है। तो जितना सोने चांदी का काम लगाओगे मंदिर में, छत्र लगाओगे और बढ़िया बढ़िया वो सब करोगे तो क्या होगा? भगवान के दर्शन में ये साधक हैं कि बाधक है? ये सोने का काम बहुत अच्छा है। हंसी जी किसे करवाया था आपने? हमें भी अपने यहां करवाना है। क्या है ये छत्र बहुत बढ़िया बने हैं, ये कहां मिलते हैं? होता क्या नहीं? अरे तुम्हें भगवान के दर्शन करने हैं तो अकेले भगवान को रहने दो ना। मैं पूछता हूं कि तुम्हें किसी को अकेला देखना है, उनको देखना है तो उन्हें अकेले में देखो ना। तो उनके साथ जो हजारों की भीड़ आती है उस भीड़ में उन्हें पहचानने नहीं पाओ। और हम बड़े पूछें कि कौन कौन है, कौन है मुख्यमंत्री जी, कौन है कौन है मुख्यमंत्री जी, कौन है इनमें, कि सफेद टोपी वाले हैं कि काली टोपी वाले हैं कि बिना टोपी वाले हैं। अरे ऐसा झगड़ा ही क्यों रखते हो? क्या कह रहा हूं मैं, अकेला प्योर अरहंत को देखो ना। क्या कह रहा हूं मैं, ये जितने भी तुम्हारे मंदिर में समोसरण के लक्षण है, समोसरण का प्रतीक है मंदिर, हमारे बड़े बड़े पर्वत की चोटियों पर पर्वतों में ही मूर्तियां खोद दी बाहुबली की है ना, और भी जाओ गुफाओं में मिलेंगी, वहां कुछ नहीं है, न छत्र है, न समझ है, न भामंडल है, न सिंहासन है, कुछ नहीं है, जंगल में खड़े हैं मतलब, वो अच्छे नहीं लगते। तो कपड़ा और पहना दो, क्या क्या है इन सहित देखना है तुमको क्या इनसे रहित सर्व परिग्रह रहता है जिनेन्द्राय नमस्कार करना है कि ये सब चारों तरफ से घिरे हुए परिग्रह से ये नमस्कार करना है क्यों बस एक मूर्ति बस मंदिर में एक शिला कमल फमल की क्या जरूरत घबराना नहीं पूरी बात सुनना मंदिर बनाना हो तो किसी प्रतिष्ठाचार्य के पास जाना मेरे पास मत आना क्या जरूरत है कमल में बैठेंगे बेटा तालाब में बैठेंगे कमल में बैठेंगे कमल तो ताल पानी के बिना होता ही नहीं है ये साधारण सलाह पर्याप्त नहीं है उबड़ खाबड़ जिसमें कोई कलाकारी नहीं हो क्यों कलाकारी करोगे तो सलाह देखेंगे लोग हमारा बस चले तो सिद्धि सलाह भी ऐसी बना दें हम उस सर्व परिग्रह से रहित वो विशुद्ध आत्मा इसलिए मैं कहता हूं कि हम यहां वैसे अरहंत लोग जो सिर्फ वीतरागी और सर्वज्ञ हो अनंत गुण तो होंगे ही और उन गुणों की निर्मल पर्यायें भी प्रकट हुई गई होंगी इसलिए उन्हें अनंत सुख भी होगा गारंटी से अनंत वीर के धनी भी होंगे क्या लेकिन दो ही चीजें लेना बस खत्म कौन सर्वज्ञता और वीतराग ज्ञान गुण का संपूर्ण निर्मल परिणमन वो सर्वज्ञता और चारित्र गुण का पूर्ण निर्मल परिणमन चारित्र ज्ञान और चारित्र दोनों हो गए तो संबंध धर्म के बिना तो दोनों होते ही नहीं है संबंध धर्म की तो प्रतिमा बन नहीं सकती है क्योंकि उसमें अपनापन का नाम अपने त्रिकाली जो भगवान आत्मा उसमें अपनेपन का नाम संबंध दर्शन तो है और अरहंत में अपनेपन का नाम तो संबंध दर्शन है नहीं क्या तो अपने को आत्मा के कल्याण के लिए हम निमित्तों की चर्चा करें कहां जाना है हमें कहां जाना है तो कहते दो ही जगह हमें जाने की परमिशन है एक आत्मा में और एक परमात्मा अपना आत्मा और दूसरे अपने वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा दो जने हो गए कौन कौन एक अपना आत्मा एक परमात्मा अपने आत्मा में जाओगे तो वीतरागता उत्पन्न होगी उन परमात्मा में जाओगे तो उत्कृष्ट जाति का राग भाव उत्पन्न होगा अब फर्क समझ लो मोक्ष महा प्रकाशक में पंडित ओरामल जी ने बहुत विवेक से रखा कि तेरी ये जो परिणति है तेरा जो उपयोग है वो कहां रहे क्योंकि रहने लायक जगह कौन है तो उन्होंने कहा सर्वोत्कृष्ट जगह तो अपना आत्मा इसकी तो कोई होड़ नहीं होती इसकी तो कोई बरोबरी नहीं होती और अपने में ना जा पाए तो उपयोग को परमात्मा तक जाने देना सिद्ध भगवान तक जाने देना वीतरागी सर्वज्ञ तक जाने देना उदाहरण दिया है क्या कि यदि कोई लड़की के लड़की को कहां रहना चाहिए पीहर में के ससुराल में बोलो क्या है आप लोगों की राय सोचो सब मूर्ख से मूर्ख सोचो और बुद्धिमान से बुद्धिमान सोचो कि किसी भी लड़की को पीहर और ससुराल दोनों हैं उसकी तो उसे जिंदगी भर अधिकांश समय कहां रहना चाहिए सर एक मत से सब कहेंगे कि अपने पति के घर पीहर प्रिय घर से बनाए गए हर हर में से घा में से देखो घा और घा ये दो अक्षर मिलके घा बनता है नहीं आई समझ में फिर आज व्याकरण फिर पढ़ाऊं एक गा है अल्प प्राण और घा है महाप्राण विद्यार्थी जानते होंगे ना क्यों जानते हो ना सब जो का है अल्प प्राण, फिर खा है महाप्राण, फिर गा है अल्प प्राण, फिर घा है महाप्राण, समझिए ना आप, चा है अल्प प्राण, फिर छा है महाप्राण, कैसा समझिए आप। इसे अंग्रेजी में कहते ना के माने का, और के एच माने खा, बस हरेक में एक लग, एच लगा दो तो अल्प प्राण से महाप्राण हो जाता है, का से खा हो जाता है, समझे। ये पहले अक्षर में से पांच बहें, पांच बहें कबर गे, बोलो चबर गे, तबर गे, पवर गे, आप समझे ना, ये पांच वर्ग हैं, इनमें से पहला अक्षर अल्पप्राण, दूसरा अक्षर महाप्राण, तीसरा अक्षर अल्पप्राण, चौथा अक्षर महाप्राण। इसलिए अंग्रेजी वालों ने 26 में कैसे निपटा लिया, हमारे 52 कैसे हो गए, क्योंकि अकेले एच ने 52 के 26 कर दिए। अकेले एच का मतलब समझते हो, एच माने पंडित हुकुमचंद नहीं, जो हा शब्द है हिंदी का वो अल्प प्राण से महाप्राण बनाने के काम आता है, समझे ना। के में एच मिला दो तो खा हो जाएगा, अल्प प्राण से महाप्राण बनाते हैं। और अल्प प्राण वाले जो अक्षर होते हैं वे कोमल अक्षर होते हैं, महाप्राण वाले होते हैं एक ऐसा करना पड़ता है जिसमें ज्यादा जोर पड़ता है, आप समझे ना, अल्प प्राण महाप्राण ह्रस्व दीर्घ फिर प्रलुप्त ऐसे चलते हैं। तो ये कहते हैं, क्या बात अपनी चल रही थी, पी हर प्रिय घर, तो घा में से महाप्राण गया और अल्प प्राण रह गया, वो रह गया जो मिलाते हैं ना, जैसे मां एच रह गया तो पी घर से हर रह गया, समझे ना। पृथ्वी ग्रह वो पी हर नहीं, पति ग्रह, पति भी हो सकता है, पृथ्वी भी हो सकता है, पितृ पिता के घर को भी पी हर कह सकते हैं, पति के घर को भी, तो पिता का घर और पति के घर दो ही घर रहने लायक हैं, और जगत में कोई जगह कन्या के लिए रहने लायक नहीं है। अब दो घरों में रहे तो अधिक कहां रहे, सुखी कहां रहेगी, खुशी की बात कहां रहने में है। टोडरमल जी ने लिखा है कि मन ना लगे, बहुत दिन हो जाए, मन ऊब जाए। बहुत सज्जन पंडित थे ना, उन्हें कुछ पता नहीं था इस दुनियादारी का, पति से झगड़ा हो जाए ये कहां जान भी लिखते, वे कैसे लिखते, इसलिए तो मेरे लिए छोड़ा हमने क्या, और घर से भागने का नंबर आ जाए, ये जमाना उनने कहां देखा था, वो तो सोचे ही नहीं था वो तो उनने कि ऐसा भी हो सकता है। तो वो भाग के कहां जाए, बोलो कि भाग के पीहर जाए, तब तक कोई कुछ नहीं कहेगा, कलंक नहीं लगेगा, और दूसरी जगह गई, पड़ोसी के घर गई, यहां वहां गई, तो समझ लो कि बस अपने कहते हैं घर में से पैर निकला सती का तो बस खत्म खेल। पिता के घर जाए तो चले, लेकिन दूसरी जगह जाए तो नहीं चले, लेकिन पिता के घर भी जा सकती है, अधिक काल ठहर नहीं सकती। क्या ठहरे, 15 दिन ठहर जाए तो पड़ोस में चर्चा हो जाए, क्यों इन्हें कहते घर में कुछ काम नहीं है क्या, 15 दिन से डटी है यहीं, क्यों कानाफूसी शुरू हो जाएगी, और महीना दो महीना हो जाए तो जो भाभियां हैं वे अपने पति से भाई से चर्चा करने लगेंगी, भाई साहब यही रहेगी क्या, ये अपना एक कमरा हमेशा के लिए गया क्या, तो क्या करेंगी, भाई भाभी भी चर्चा शुरू कर देंगे, और साल भर ले जाए तो मम्मी पापा भी चर्चा शुरू कर देंगे कि तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है, साल भर सी बेटी घर में बैठी, पता तो करो क्या बात है, झगड़ा हो गया क्या हो गया, जाके देख के आओ, नहीं तुम ले जाओ, वे ले भी नहीं आए तो तुम छोड़ के आओ, कैसे ही करके करो निकालो। नहीं है, ज्यादा दिन आप नहीं रह सकते, ना गांव स्वीकार करेगा, समझे ना, ना घर वाले स्वीकार करेंगे, ना मोहल्ले वाले स्वीकार करेंगे, ना भाई भाभी स्वीकार करेंगे, वो माँ बाप भी जो सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं वे भी स्वीकार नहीं करेंगे। अब समझ लो तुम्हारे सुहोपयोग की कितनी इज्जत है। सुहोपयोग माने पिता का घर, सदुपयोग माने पति का घर। और पिता भी कैसा होना चाहिए, वीतरागी सर्वज्ञ, क्या वो समोषण वाला, ये विभूति सौ इंद्र नमत कर नमस्ते, क्या शीशधार, सौ इंद्र जिसके चरणों में नमस्कार करते हैं, क्या मालूम। इस पंक्ति का अर्थ करने में 100 पेज तो मैं लिख सकता हूं, तू कितना लिख सकता है, वो सबसे होशियार तू ही है ना, खड़ा हो बता कितने पेज लिख सकता है, क्या कहा इस पंक्ति के अर्थ करने में, सत इंद्र नमत कर शीशधार, सौ इंद्रों का वर्णन शुरू करूंगा, भबड़ादय 40, बेंतर देवान 32, कप्पा मर 24, तंद्रो सूर्यो नरो निरो, फिर सबका वर्णन, फिर सबकी रहने की जगह और सबकी शक्तियों का वर्णन, और चक्रवर्ती की उंगली में कितना ताकत थी या कोई टेढ़ी नहीं कर पाया था, बहुत क्यों, अब तो लिख लेगा नहीं, अब तो मैं 200 लिख दूंगा, समझ आया, ये हमने अरहंत की दशा कर दी, फिर ये करते हैं ये करते हैं ये करते हैं, जो बेचारे कुछ नहीं करते वो सर्वथा करता है, आज तक किसी का कुछ नहीं किया, उन पर हमने इतने आरोप जड़े हैं, इतने आरोप जड़े हैं, कभी सजेंगे, यदि उनकी सजा रहे 1,00,000 करोड़ वर्ष की सजा दी जाएगी उन्हें, सबका किया, अकेला बचाने का काम थोड़ी किया, ये भगवान करता धरता जिनके यहां है, वो मारने का काम भी भगवान ही करता, क्यों, बचाने वाला भी भगवान है और मारने वाला भी भगवान है, हमारे यहां तो नहीं है, कैसी बात करते हो, विद्धस्त बुद्धस्त तुमेव, क्या बोलो,
बुद्धि बोधात् तं शंकरोऽसि भुवनत्रय शंक धातासि धीर शिव मार्ग विधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि।
हे भगवान, तुम्हें बुद्धो, तुम उस वक्त बौद्धों का बहुत जोर चलता था, बुद्ध भगवान का, बौद्धों का हिंदुस्तान में बहुत जोर था ना, तो सबसे पहले बुद्ध का नंबर आया, और तुम्हें शंकर, शंकर तुम्हें हो, और तुम्हें धाता माने विधाता ब्रह्मा हो, जगत को बनाने वाली है ना, और तुम्हें रक्षक हो, है ना, कौन सा आता ना रक्षक किए, और तुम्हें पुरुषोत्तम हो, जो कुछ हो तुम्हें हो, हम सब उनको बना देंगे, फिर अपनी व्याख्या अलग करेंगे, वो अलग बात है, उसके पंडित अलग बैठे हैं, तुम शंकरोसि शंकर भुवनत्र शंकरत्वात्, तीन लोक में शांति करने वाले होने से तुम शंकर हो, शंकर शब्द की व्याख्या होती है शंकरत्वात्, शांति करें, धातासी तुम्हें ब्रह्मा जी हो जिनने दुनिया बनाई है, कि तुमने इन्हें क्या बनाया, शिव मार्ग विधेर विधानात्, मुक्ति का मार्ग बनाया, बढ़िया सड़क डाली मुक्ति की, चले जाओ जिस जिसको जाना है, बुद्ध क्यों हो, क्योंकि तुम पूर्ण बुद्ध हो, माने केवल ज्ञान के धनी हो, बुद्धस्त तुमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधात, अब इसमें और ही गजब लिखा, केवल ज्ञानी नहीं लिखा, क्या लिखा, तुमेव विभुधार्चित बुद्धि बोधात, ये विभुचार्चित क्या होता है, विबुध माने देवता भी होता है, विबुध माने विद्वान भी होता है, तो विबुधार्चित विद्वानों के द्वारा देवताओं के द्वारा अर्चित हैं, पूजे जाते हैं करण चरण कमल जिनके। विबुधार्चित का मतलब है जी, अर्चित माने पूजे जाते हैं। ऐसी बुद्धि वाले हो, विबुधार्चित बुद्धि बोधात्, ऐसे बोध के धनी हो कि जिस बुद्धि के बड़े बड़े देवता बड़े बड़े विद्वान जिसके चरणों में लौटते हैं, इसलिए तुम बुद्ध हो। तुम दुनिया में शांति करने वाले होने से शंकर हो, तुमने मोक्ष मार्ग बनाया इसलिए तुम धाता हो, और तुम ही पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम कौन हो जानते? कौन है पुरुषोत्तम? है कोई? कोई भगवान है पुरुषोत्तम? नहीं मालूम, कोई चिंता नहीं, अभी मैं जिंदा हूं ना। दो भगवान हैं पुरुषोत्तम दादा, एक लीला पुरुषोत्तम और एक मर्यादा पुरुषोत्तम। सुने ये नाम के नहीं सुने? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, उन्हें सब तरह की मर्यादाएं रखी, और लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान, जिनने सब तरह की लीलाएं की। माने जाते हैं, पूछ लेना आप जाकर के, लीला पुरुषोत्तम तो तुम पुरुष, तुम दो ही पुरुषोत्तम हो। कितने रामचंद्र जी है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम, कितनी बढ़िया मर्यादा रखी। तो सीता जी को जंगल ही में भेजा, मारा तो नहीं, क्यों अकेले छोड़ा तो क्या है, क्यों गर्भवती को छोड़ा तो क्या फर्क पड़ता है। इसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा पुरुषोत्तम का अर्थ जानते हो? मर्यादा पुरुषोत्तम के भगत लोग क्या अर्थ बताते हैं, सुना कभी? वो भी सुन लो। रामचंद्र जी जब सीता जी का अपहरण हो गया तो पशु पक्षियों कीड़े मकोड़े पेड़ों से लताओं से बेलों से पूछते फिरते थे कि तुमने हमारी सीता देखी कि नहीं। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, हे मृग हे खग मधुकर श्रेणी, तुम्हें देखी सीता मृग नैनी। पढ़ा क्या अर्थ है इसका, सुना कभी, सोचा? हे मृग, मृग माने अरे मिट्टी पलीत कर दी, क्यों बोलते हो? मृग माने पशु, मृग शब्द पशुओं का प्रतिनिधि है। मृगी मृगेंद्रम, हिरण सामने नहीं खड़ी रह सकती है, ठीक है ना। भेद किम निश्चसो पलिपाल नार्थम, वो साधारण पशु खड़ा नहीं रह सकता है। जो शेर के सामने अपने बच्चे को बचाने के लिए खड़ा रह सके ऐसा पशु पकड़ना पड़ेगा। गाय का पे कदाचित हो सकती है, समझे। मृग माने पशु और खग माने चिड़िया। अरे फिर मछली बोले मोटा। खग माने पक्षी, उसमें बेनते भी आएगा, समझे ना, गरुड़ बड़े बड़े पक्षी जो आकाश में जहाजों को ले जाए, चाहे जिसको उठा, हाथी को उठा ले जाए। क्या खगे खे गच्छती थी खगा, खे माने आकाश में जो चले उन्हें बोलते हैं खग, समझे ना। हे खगे हे मृग हे खगे ओ मधुकर सैनी, मधुकर माने मत बोलो फिर इज्जत जाएगी। मधुकर माने भौंरा नहीं, सब जो उड़ने वाले कीड़े पतंगे जिसमें ये मच्छर भी आएंगे डेंगू फैलाने वाले हैं, सब ही होने जो पंखों से चलते हैं और छोटे छोटे हैं। तो आप समझ लो, अभी देख आधी लेन है, आधी लेन का अर्थ हे क्या, हे मृग हे खगे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तुम लोगों ने हमारी सीता को देखा है कि नहीं देखा है? पहचानते नहीं हो? अरे जिसकी हिरणों जैसी आंखें थी, कितनी बढ़िया आंखें, आंखें देखते आंखें ही आंखें देखते रह जाओ। इतनी प्यारी आंखों वाली सीता को तुम लोगों ने देखा कि नहीं देखा? तो फिर उनके शिष्यों ने ही प्रश्न किया कि तुम्हारे भगवान रामचंद्र जी भगवान हैं, उन्हें इतना पता नहीं था, वो इतना ना समझते कि मच्छरों से पूछते थे, मक्खियों से पूछते थे। क्यों? कि नहीं, वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ये है अर्थ इसका। मर्यादा पुरुषोत्तम माने जिस मनुष्य की पर्याय में अभी अवतार लेके आए थे, वो अपना सारा जीवन उस मनुष्य जैसा बिताएं। क्यों ऐसा किया? मनुष्य जैसा क्यों बिताएं? क्योंकि वे दुनिया को आदर्श सिखाना चाहते थे। यदि वे भगवान बन के और फटाफट जादू दिखाते, बार बार ऐसा कर दिया, ये जान लिया, फटाफट ब्राह्मण को पकड़ो, मार दो, उड़ा दो, सब कर सकते थे, तो फिर लोग कहते भैया वे तो भगवान हैं, हम क्यों उनके पीछे पड़े, हम तो वैसा कर ही नहीं सकते। तो वो ऐसा काम करना चाहते थे कि जो साधारण आदमी पर यदि ऐसा संकट आए तो जैसे वो अपने संकट में उस संकट से फेस करेगा ना, ऐसा ही फेस करके बताना चाहते थे, वो शिक्षा देना चाहते थे। क्योंकि वो साधारण आदमी की यदि पत्नी को कोई ले जाए तो वो आधा पागल हो जाता है। उन्हें पता था कि वो पशु पक्षियों से पूछता फिरेगा, तब समझ लेना कि इसकी पत्नी खो गई होगी। समझ जाएगा? वो कहते हैं वो मर्यादा में थे, वो अपनी सर्वज्ञता का उपयोग नहीं कर सकते थे। लेकिन हमारे जैन दर्शन में ऐसा एक भी सर्वज्ञ नहीं है कि जो सर्वज्ञता का उपयोग ना करे, ना कर सके। नहीं, एक भी सर्वज्ञ को एक मिनट भी सारे लोकालोक को नहीं देखे ऐसी पोजीशन में आना संभव नहीं है। क्या? तो ये कह रहे हैं कि तुम उनकी सर्वज्ञता और वीतरागता को पहचानो, ये 34 अध्यायों को मत पहचानो। हम भी कह सकते हैं जैसे वह राम में लगाए, तो हमारे भी लीला पुरुषोत्तम हो सकते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हो सकते हैं, सब लगा वो लगा ही दिया ना उनने भक्तांबर में, पुरुषोत्तम ओसी कि पुरुषोत्तम है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि इस तरह के विशेषणों में मत चले जाना। कभी लोग तो जाएंगे, ये तो आधे पागल होते हैं। ऐसी कल्पनाएं करना उनका काम है। आपकी समझ में आई बात कहने आई? ये हम तुम सिर्फ दो विशेषण तक सीमित रहना, काहे पे? सर्वज्ञता और वीतरागता पर। तो जो अरहंत को जानते हैं, दृप से माने सर्वज्ञ स्वभावी अरहंत, वीतराग स्वभावी अरहंत, गुण माने ज्ञान गुण ज्ञान स्वभावी अरहंत, चारित्र स्वभावी अरहंत, और पर्याय माने प्रगट पर सर्वज्ञता और प्रगट वीतरागता पूर्ण, ऐसे अरहंत भगवान को जो जानता है। कितना काम सरल हो गया, ये सब छोड़ा छुट्टी छुट्टी, इनकी जरूरत नहीं है। इन सब चीजों का वर्णन कर करके हमको इतना उलझा दिया कि मूल चीज गायब ही हो गई। सच बोलो, हम छाती पे हाथ रख करके, मेरे प्रभाव में आके नहीं बोलना कि भगवान के सामने जाते हैं तो छत्र समर के अलावा और क्या दिखता है, वो मूर्ति के अलावा और क्या दिखता है? भगवान वीतरागी सर्वज्ञ होते हैं, इस पर ही हमारा उपयोग केंद्रित होता है। इसका पूरा अर्थ हम समझते हैं कि नहीं समझते हैं? सब कुछ नक्की है, ये हमारी समझ में नहीं आता है कि नहीं आता है। अनंत काल तक भगवान के सर्वज्ञ ज्ञान में सर्वज्ञता का स्वरूप समझने के लिए क्रमबद्ध प्रयास समझनी पड़ेगी कि नहीं समझनी पड़ेगी? अरे समझनी नहीं पड़ेगी, माननी पड़ेगी। क्यों? जब हम सर्वज्ञता का स्वरूप नहीं समझते हैं तो हम जैन दर्शन का जीरो नहीं समझते। क्यों? तेरासीवीं का था, बोलो। द्रव्यादि में जो
मूढ़ता वह मूढ़ उसके जोर से कर राग रुस पर द्रव में जिए क्षुब्ध हो चाहूर से।
क्या लिखा है देखो तो द्रव्यादि में माने जो छह द्रव्य हैं उनके संदर्भ में जो मूर्ता माने मूर्खता माने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है तो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता मानना एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भोक्ता नहीं है तो उसको एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य का भोक्ता मानना एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का स्वामी नहीं है तो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का स्वामी मानना एक द्रव्य किसी का कुछ नहीं है तो इसका वो और उसका वो ऐसा उनमें संबंध स्थापित करना ये क्या है द्रव्यादि में मूर्ता। इतनी बड़ी अत्यंत अभाव की वज्र की दीवार खड़ी है और तुझे करते ही करता दिखता है करते ही करता दिखता है ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया भगवान की भक्ति करने बैठता है ना तो तूने ये किया ये किया ये किया ये अपने ज्ञानियों के भगवान की भक्ति है। हमको हमारे गुरु जी भक्तांबर पढ़ाते थे तो पढ़ाते पढ़ाते जब आठवें छंद पर आए तो उन्होंने कहा मारभ्यते तनुधिया तब प्रभावात क्या बोलो क्या अर्थ है इसका। इसमें लिखा मारभ्यते तनुधियापि अब हे भगवान मैं तुम्हारी स्तुति को आरंभ करता हूं। आरभ्यते का अर्थ है ना यद्यपि मेरी बुद्धि बहुत अल्प है तनुधिया तनु माने अल्प और धिया माने बुद्धि यद्यपि मेरी बुद्धि बहुत अल्प है फिर भी तब प्रभावात मैंने तुम्हारे प्रभाव से अब मैं तुम्हारी स्तुति आरंभ करता हूं। तो मैंने अपने गुरुजी से कहा मुझे बिल्कुल दृश्य याद है कैसे बैठे थे हम कैसे पूछे थे मैंने कहा अभी तो ये शुरू कर रहे तो अभी तक क्या कर रहे थे आठ छंद निकल गए भाई साहब हम भगवान की स्तुति करते हैं तो आठ छंदों में तो हम पूरी कर देते हैं। हमने भगवान महावीर आदि लिखा ना अष्टक महावीर अष्टक में आठ छंद नहीं लिखे पूरे हो गया ने? और कोई लिखते हैं अभी आठवें छंद में तो ये लिखते हैं कि आरभ्यते कि आरंभ करता हूं। तुम्हारे गुरुजी ने क्या जवाब दिया था कि यही तो स्तुति है और करना क्या है यही ऐसी बातें करना है क्या ऐसी बातें करना है और कौन सी स्तुति अलग से क्या करना है बुद्धिया बिना भी विबुधार देते बोलेंगे कि मैं बुद्धि नहीं हूं मैं अल्प दिया हूं अल्प श्रोता हूं शुद्ध बताऊं परिहास धामा मेरी मेरी बहुत कम अकल है वो लोग हंसेंगे मेरे पर फिर भी मैं परवाह नहीं कर रहा। पर ये हमारी मम्मी मेरे से कहती थी बेटा इसको भगवान की भक्ति कहते हैं। मैंने कहा मम्मी तुम सबसे ज्यादा समझती हो आज तक किसी पंडित ने नहीं कहा कि इसमें भक्ति मुक्ति है क्या बोलो दिखाओ मैं बताऊं पूरा मुझे भी अभी और जीना है दस पांच साल इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। इंदौर में मैं रहता था जो मोक्ष मंडल का था मैं तो कुछ एक कार्य करता और वहां भक्तांबर मंडल नाम की एक संस्था है और वो हर शनिवार को हर रविवार को हर मंदिर में गांव गांव में जाकर के भक्तांबर का अखंड पाठ करती है। तो मैं तो था इस मोक्ष मंडल में और मेरा मामा सग्गा वो भक्तांबर मंडल का अध्यक्ष था इंदौर में और दो ही मंडलों के लोग कहते थे इन दोनों ने दो ही मंडलों को दाब रखा। वो मामा का लड़का भी है अभी है पूरन चंद नाम है उसका और वो भक्तांबर मंडल का अध्यक्ष है। तो मेरे पास आया तो वो दादा दादा बोलते हैं सब कि दादा हमारे आज पाठ है कांच के मंदिर में। और मैं कांच के मंदिर के बगल में ही रहता था, वही नरिया वाकर बोलते हैं भरत मारी, वहां से 10 कदम पे ही रहता था। तो बोले दादा आप 1 घंटा प्रवचन कर देंगे। मैंने कहा भैया मत करा तू मेरे से, तू मेरे से प्रवचन मत करा, तेरे को फायदा नहीं है, मैं तेरी बात टालूंगा नहीं, प्रवचन तो कर दूंगा लेकिन तुम्हारे लोग मेरा प्रवचन सहन नहीं कर पाएंगे। क्या कहते तुम करोगे क्या मुझे बताओ कि भक्तांबर जी का अखंड पाठ। अच्छा भक्तांबर जी का अखंड पाठ तो उसमें अखंड कौन रहेगा? जो भक्तांबर का पाठ करने वाले अखंड रहेंगे वे 24 घंटे तक लगातार बोलेंगे, नहीं नहीं बदल 3-3 घंटे में बदल जाते हैं। रात के 12 बजे से 3 बजे तक गए, 3 बजे से 5 बजे तक गए और बस 3 बजे खत्म हुआ उनकी पार्टी तो फिर चाय पार्टी। रात के फिर रात के अभी होता है, घबराना नहीं, मैं सोच समझ के बोल रहा हूं, ये भी इंदौर में जाएगा, अभी मुझे इंदौर जाना भी है 2-4 दिन में ही। क्या क्या होगा बोलो? तो वो पाठ करने वाले तो अखंड है नहीं, फिर तो चाय पानी के बदलते रहते हैं, कौन है अखंड बताओ तो मुझे? बेचारे वे भगवान हैं अखंड, तो कि जो चुपचाप बैठे हैं 12 घंटा अखंड रूप से तुम्हारी सुननी पड़ेगी जो कुछ भी तुम बोलोगे। एक अक्षर समझते नहीं है, किस काव्य का क्या अर्थ है ये समझते नहीं है। मैं भक्तांबर की रग रग से परिचित हूं, तुम कोई भी छंद बोलो तो उसका अर्थ क्या है कहां से, और मेरे तरीके से मैं अर्थ बताऊंगा तो तुम्हारी आंखें फैल जाएंगी। इसलिए मैं नहीं गया, मैंने कहा भाई तेरा काम तू चला, मेरा काम मुझे चलाना है, काहे को झगड़ा करते हो, तेरा काम अलग है और मेरा काम अलग है, तो आज तक उसका चल रहा है। क्या है ये सब मैंने बता भी सुना है ना, कि इसको स्तुति बोलते हैं। हे महाभगवान तुम्हारी माता बस एक ही है, तुम्हारी है बा, ऐसी कोई दूसरी माता हमने आज तक देखी नहीं। अरे सूरज को पूरब ही पैदा करता है, हरेक की ताकत थोड़ी है कि जो सूरज को पैदा कर दे, आप तो सूरज हो तो आपकी माता भी एक ही है। बोलो चंद
पुत्रान नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वा दिशो ददति वाणि सहस्ररश्मि प्राचेव देजनयते स्फुरदंशुजालम्।
हजारों माताएं हजारों पुत्रों को पैदा करती हैं, उसमें लगा है क्या सहस्रेशु जननी है ना, और सवेर से हजारों बच्चों को पैदा करती हैं, लेकिन तुम्हारी मां एक ही थी जिसने तुम जैसा बेटा पैदा किया, और नहीं थी कोई है? अजितनाथ को पैदा करने वाली नहीं थी, वो 19 ही थी, संभवनाथ की मम्मी 19 ही थी, महावीर की मां 19 ही थी, अकेली ऋषभदेव की मम्मी थी ऐसी, कैसी बात करते हो? तो भगवान मानता हूँ आचार्य ने, अरे कौन से आचार्य ने लिखा है, मैं कब मना कर रहा हूं, तुम उसका अर्थ बताओ ना मुझे, तो ऐसा क्यों लिखा है? ऐसा ही लिखा जाता नहीं है ऐसा। एक गांव में कभी ऊंट नहीं देखा था किसी ने, तो ये ऊंट आया सब देख, अरे देखो देखो देखो, सारे लोग इकट्ठे हो गए। अब बच्चे ने अपने माँ बाप से पूछे, पापा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? तो कहा भैया ये ऐसा ही होता है, ये ऐसा ही होता है। तो दूसरा बच्चा बोला, पापा इसके गले में ये क्या लटक रहा है? कि बेटा ऐसे के गले में ऐसा ही लटका रहता। क्या समझ? बाबा ऐसा ज्ञान है। किसी को पता नहीं है कि ये क्या है, समझे ना। ये मैंने गांव गांव में सुनाया है 300 जगह, एक एक उदाहरण है, पहली दफे नहीं कह रहा हूं। यदि मैं हाथ उठवाऊंगा किन किन ने सुनाया तो 100-200 हाथ उठ जाएंगे। यहां मैं काल में बताता था कि धर्म चक्र चला था, तो चार धर्म चक्र बने थे, एक मध्य प्रदेश का, एक अलग अलग हिंदुस्तान में, तो वे अलग स्टाइल से बने थे, साधारण से ऐसे बना पर बनाते थे और उस पर चला करके धीरे धीरे चलते थे, ऐसे बने थे। एक एक घंटे में 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर चले बस, और ऐसे उस पर बनाए थे, वो ऐसा रहता था। फिर हमने गुजरात का धर्मचक्र बनाने का मौका आया, बाबूभाई ने कहा अपन धर्मचक्र है कि रोजीना 1000 सारे सिद्धों की वंदना करेंगे और 3 महीने तक चलेंगे, 100 दिन में 1000 किलोमीटर चलेंगे। तो ऊर्जा कैसा होना चाहिए कि जैसे अभी कार दौड़ती है इतनी तेजी से दौड़े, और धर्मचक्र के ऊपर बनाना था। हमने यही सामने खड़े रह करके वो धर्मचक्र बनवाया था। कौन बताया कैसा बनाना चाहिए? आदर्श तो वो था कौन जो दिल्ली में बन रहा था, उसके फोटो आ गए थे अखबारों में, सब आ गया था, और कुछ धर्मचक्र तो जमीन पर ही आ गए थे। हमने बनाया उसको, एक बोली थी कौन सी गाड़ी ली थी, और उस गाड़ी के ऊपर ऐसा 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 धुआं कहते वो घूमता था तेजी पतंग जैसा, या तो देखा ना अशोक, याद है कुछ? तो अब हर गांव में मुझे जाकर के धर्मचक्र पर व्याख्यान देना पड़ता था। 2 व्याख्यान होते थे मेरे, एक अहिंसा पर एक धर्मचक्र पर, बाबू भाई मेरे को आगे कर देते थे। तो मैं गांव गांव में सुनाता है कि धर्मचक्र कैसा होता है, तो ऐसा होता है जैसा हमने बनाया है, और वो उनने बनाया है वैसा नहीं होता है। बताओ वेला में फोटो मोटू कहां से लाए, कैसा होता देखो, वो उनका किसने देखा है वो हमें बताए कि ऐसा होता है। हमारा सार सबका ज्ञान ऐसा ही है क्या कि धर्मचक्र क्या होता है। एक घंटा बोलता था धर्मचक्र पर, चक्र बोलते हैं समूह को, देवेंद्र चक्र, भुवनेन्द्र चक्र, धर्मेंद्र चक्र, तीर्थंकर का धर्म चक्र है ना, तो धर्मात्माओं के समुदाय को धर्म चक्र कहते हैं। चक्र माने समूह और धर्म माने धर्मात्माओं का। तो हमारा धर्म चक्र सच्चा इसलिए है कि हमारे साथ धर्मात्माओं का एक समूह 1000 लोगों का यात्रा में जाता है, ऐसा धर्म चक्र होता है। तुम्हें 6 आदमी जाते हैं, पर एक पंडित, एक चपरासी, एक वो करने वाला घंटा बजाने वाला, एक ड्राइवर, एक ड्राइवर के साथ क्या होता है क्लीनर, तो 6 आदमियों का जाता है, हमारा 1000 आदमी का जाता है। और उन्हें तुम्हें समझाया कभी कि धर्मचक्र कैसा होता है? हम बताते हैं हर जगह। भगवान का समोषण चलता था ना, तो उसमें 1000 लोग साथ में चलते थे, उसको धर्मचक्र का प्रवर्तन कहते हैं। तो ऐसा चल रहा है, तुम अकेला इसको क्यों देखते हो? ये पूरा ये धर्मचक्र है। अभी अपना ये व्याख्यान हो रहा है ना, तो ये धर्मचक्र चल रहा है। जब धर्म की चर्चा हो रही है, भगवान के समोषण में जैसे लोग थे तत्व के जिज्ञासु, वे सब बैठे हैं और धर्म की बात हम उन्हें सुना रहे हैं, और यहां चले हैं। अब आज जयपुर में सुना रहे हैं, कल देवलाली में सुनाएंगे, परसों बम्बई में सुनाएंगे, तो हमारा धर्मचक्र चल ही रहा। महावीर का तो 30 साल तक चला था, हमारे तो 48 साल हो गए चलते चलते, एक दिन भी नहीं रुका। क्यों, क्या है धर्मचक्र? मेरे कहने का मतलब यह है कि हम गहराई से समझें, विचार करें कि इसका क्या अर्थ हो सकता है, क्या अर्थ होना चाहिए, और वो क्यों सत्य है। तो हमको अरहंत को द्रिगुण पर्याय से जाने, तो हम ये जान लें कि उसमें इतने समय समोषण था, इतने ये थे, एक वो का एक हाथी था, वो हाथी में एक सूंड थी, एक सूंड में 25 सूंडें थी, एक एक सूंड में एक एक कमल था, कमल में एक एक देवांगना नाच रही थी। क्या क्या करें बोलो, सूंड देखा जी इसका, वो देवांगना का नृत्य देखे, एक नीलांजना से तो हम परेशान हैं क्यों, धर्मचक्र चलता था तो उसमें नीलांजना नहीं नाचती थी, कोई नाचने माचने वाला नहीं था, वो हाथी घोड़े, क्योंकि ऐसा हाथी तो हमने आज तक कहीं देखा नहीं है। तो तुम उनको जवाब उन पंडितों से पूछो जो चलाते हैं। हम तो जो चलाते हैं धर्म चक्र माने धर्मात्माओं का समुदाय, उसका नाम धर्म चक्र है, ख्याल में ना। 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं का समुदाय, उसका नाम है चक्र रत्न, ख्याल में ना। ये इस रत्न चक्र माने समूह होता है, मूल मुद्दे की बात यह है। तो ऐसे ही अरहंत भगवान को जानने का मतलब है दिव्य गुण पर्याय से जानो, अतिशयों से मत जानो। और तुम तो 34 अक्षर पहले, तब मैंने बालबोध पाठमालाएं लिखी, तो कैसा अरहंत का स्वरूप, पंच परमेश्वरी का स्वरूप लिखो, तो अरहंत के 46 गुण आ गए सामने। मैंने कहा हो गया कल्याण, क्या करो उपेन्द्र जी, क्या करोगी, तुम्हें ऐसा भाषण लिख देता हूं, हा? क्या करता बताओ, तुम सब होशियार हो ना पंडित। मैं कहा तुम चिंता मत करो, मैं अभी हाल उसका ऑपरेशन करता हूं। कि ये तो जन्म के अतिशय है, भगवान का तो जन्म होता ही नहीं, ये तो जन्म में गए, क्यों, ये देवकृत हैं, ये तो देवों ने किए, तो ये देवों में गए, ये प्रातिहार हैं, ये ठंडी ठंडी हवा, भगवान का क्या लेना देना, प्रातिहार इसमें गए। बच्चा कहते 4 बचे, कौन कौन, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर। तो आ गया ना अनंत ज्ञान, तो सर्वज्ञता आ गई क्या नहीं, उस भाग में भी हमने ये लिख दिया, और बच्चे बच्चे को याद हो गया सारे हिंदुस्तान के, क्या अरहंत के असली गुण कितने हैं, वे जो बाकी के 42 गुण हैं वे तो तरक्की कसौटी पर कसने पर खड़े नहीं उतरते हैं। जनवाणी में क्यों लिखे, ये व्यवहार में ऐसे लिखा है, हमारे यहां एक खाता है जो उसमें सबको खताया जा सकता है बहुत आसानी से, उसका नाम है व्यवहार में।
जानंदी।